करूंगा। ये उनके गुरु का आदेश था। कहानी बहुत लंबी है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। लेकिन प्रभुपाद जी जब पहली बार अपने गुरु से मिले तो उनके गुरु ने उनको वही आदेश दिया था, कहा था कि आप पढ़े लिखे इंसान हो और आप क्यों नहीं इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार अंग्रेजी भाषा में करो। और तब उन्होंने कहा था कि हमारा भारत गुलाम है, कौन सुनेगा हमारी बात, है कि नहीं, पहले हमको आज़ादी चाहिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनसे कहा कि आप जिस आज़ादी की बात कर रहे हो वो शारीरिक स्तर पे है, लेकिन हमको ये समझने की जरूरत है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा का परमात्मा के साथ योग बहुत जरूरी है और ये इमरजेंसी है, अर्जेंसी में इसको करना है। और वो इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद ने हमेशा अपने हृदय में रखी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो तुरंत कर नहीं पाए थे। लेकिन सारा अपना जीवन के अंत में, लाइक जब 70 वर्ष के हुए तब प्रभुपाद जी अमेरिका गए। और एक बार भक्ति चारू महाराज हमको बता रहे थे, वो कह रहे थे कि आपको पता है प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा त्याग किया और कितना बड़ा उनका योगदान है। तो कुछ भक्तों ने कहा कि हाँ महाराज, हम लोग सोच सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं सोच सकते, तुम समझ भी नहीं सकते। जब तुम 70 वर्ष की आयु के होगे तब तुमको समझ में आएगा, क्योंकि अगर हम लोग जब तक उस आयु तक नहीं पहुंचते हैं, कई बार उस आयु का जो डिफिकल्टी है, तो आप आगे आ जाओ, आप आगे जाओ, छोटे लोग हैं वो आगे आ जाओ। हाँ, तो उन्होंने कहा कि 70 वर्ष की जब आयु में आप जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि प्रभुपाद का आराम से प्रभु जी। तो माता जी आप इफ यू वॉन्ट यू कैन सिट अप सो दैट यू कैन सी एक्चुअली, अदरवाइज नहीं आप बैठ जाइए ऊपर, नो प्रॉब्लम, आप ऊपर बैठ जाइए, आप आज आराम से सेटल हो जाओ प्रभु जी, इस तरफ आ जाओ। हाँ नहीं, हूएवर वॉन्ट्स दे कैन सिट अप, नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन विद अस। हाँ ऊपर बैठ जाइए भले। तो देखो अभी हम लोग यही बात कर रहे हैं, हम लोग 70 वर्ष की आयु में नहीं पहुंचे हैं, फिर भी हमारे को नीचे ऊपर है ना, बहुत डिफिकल्टी होती है। और ये सत्य बात है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन तो कहा कि जब 70 वर्ष की आयु के हो जाओगे तब समझ में आएगा कि प्रभुपाद ने क्या किया है आपके लिए। तो प्रभुपाद जी अमेरिका में गए और आप सब ये लीला जानते हैं प्रभुपाद की। बड़ी कठिनाई से प्रभुपाद जी ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसकी स्थापना की, इस्कॉन की। और उसके बाद कुछ प्रभुपाद के शिष्य बने और वो भी सब, ज्यादातर लोग सब नशेड़ी थे, ज्यादातर क्या सारे के सारे लोग ही नशेड़ी थे जो पहले जो भक्त बने वो। और बहुत कठिनाई से प्रभुपाद ने उनको भगवान के बारे में बताया, समझाया। सोचो हम लोगों को हिंदुस्तानी होके हम लोगों को इतना डिफिकल्टी हो रहा है इस वर्ष को पढ़ने के लिए, तो सोचो उनकी क्या हालत होगी। और ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद का एक्सेंट बहुत कोई अच्छा था सुनने के लिए, बूढ़े व्यक्ति थे, बंगाली थे, थोड़ा एक्सेंट भी उसी प्रकार का था, लेकिन क्योंकि प्रेम था और भगवान का पूरा आशीर्वाद था, कृपा थी भगवान की, इसलिए उन्होंने वो जो कर दिया जो न भूतो न भविष्यति, जो कोई भी नहीं कर सकता है। तो प्रभुपाद जी विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी असिस्टेंट 40 रुपये जेब में लेके गए थे अपने, और वो 40 रुपये वहां पर कोई एक्सचेंज भी नहीं करना चाहता था 1965 में। $7 थे वो, लेकिन वो 40 रुपये लेके कोई उनको डॉलर नहीं दे रहा था, क्योंकि किसी को चाहिए ही नहीं था वहां पे, रुपयों की क्या कीमत थी, कोई नहीं। तो प्रभुपाद जी जो पैसे लेके गए थे वो वापस लेके आ गए ऐसा। तो उनका कोई कुछ नहीं था उनके पास में, और प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया। इंडी प्रभुपाद जी के पास ऐसा था, जब कुछ भक्त लोग आए तो वो उनके लिए कुछ प्रसाद खिचड़ी बनाना चाहते थे, वो भी उनके पास पैसा नहीं था, तो वो गए नीचे सुपरमार्केट में खरीदने के लिए। और जब उन्होंने खरीद के काउंटर पे वो दिया और वो लेडी ने बताया कि इतना डॉलर हुआ, तो प्रभुपाद जी आर्ग्यूमेंट करने लगे, बोले इतना थोड़ी होता है, मैं भारत से हूँ, चावल क्या इतना महंगा, मतलब आप $5 $10 खाली चावल और दाल का ले लोगे। और उनके पास पैसा नहीं था, तो काउंटर पर बैठी लड़की ने पैसा अपनी जेब से डाल के प्रभुपाद को दिया, और तब प्रभुपाद ने जाके और भोग बनाया, भोग लगा के लोगों को प्रसाद दिया। और लोग आते थे, नशेड़ी थे सब, आते थे, सोचते नहीं थे, खाते थे और चले जाते थे, ये आधे लोग तो वहीं ढेर हो जाते थे खाने के बाद में। और इतना सारा प्लेट जो होता सब जमा होता था, और प्रभुपाद जी उनकी प्लेट धोते थे। आप सोचो, थोड़ा आप विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए क्या त्याग दिया। हाँ, लेकिन आप सोचो कि प्रभुपाद उनकी प्लेट धो रहे हैं। कौन? एक जगत गुरु वर्ल्ड आचार्य जो है वो उनकी प्लेट धो रहे हैं। और ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी को कुछ जरूरत था कि अमेरिका में पैसा कमाने जाना है, जैसे हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, वैसा कुछ नहीं था। प्रभुपाद जी आराम से बैठे थे राधा दामोदर मंदिर में, श्री रूप गोस्वामी की और जीव गोस्वामी की समाधि और उनके भजन कुटीर के सामने राधा दामोदर जी का दर्शन करते हुए अपना वो वहां पर बैठ के भक्ति कर रहे थे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं जाऊंगा और जाके, और क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है, मैं ये कार्य करूंगा। तो बहुत कठिनाई से उठा के उन्होंने, और ये भागवत जो हम पढ़ रहे हैं या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अभी, तो ये भागवत श्रील प्रभुपाद जी ने कब लिखा? स्टार्ट में जब प्रभुपाद जी जब भारत में थे तो, अच्छा बाकी सबका फोकस इधर होना चाहिए, एक आदमी अगर काम कर रहा है करने दो उसको। तो प्रभुपाद जी ने केवल आई थिंक पहला दूसरा कैंटो या तीसरा कैंटो शायद ऐसा था जो लिखा था भारत में, फिर वो चले गए थे अमेरिका। और उसके बाद सारा का सारा जो भागवत का तात्पर्य है और ये श्लोक का जो श्लोक विच्छेद है, ये प्रभुपाद जी ने अमेरिका में बैठ के किया। और साथ साथ में कितना सारा काम किया उन्होंने, भक्त बनाए, लेक्चर्स दिए, रिपोर्टर लोगों को मिले, मंदिर की स्थापना की, और इतना सब कुछ करते 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 प्रभुपाद को दिन में टाइम ही नहीं मिलता था। तो प्रभुपाद जी ने कभी लिखा ये परपट? रात को। टाइम क्या, कितने बजे से कितने बजे तक? रात को 1 बजे से लेके 4 बजे के बीच में, वो समय जो हमारे लिए सबसे प्रिय समय होता है, जिसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, है ना। बहुत सारी सेवाओं में हम आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन हमारे सोने के टाइम में हम लोग कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो उसको हम कॉम्पनसेट करते हैं सुबह लेट उठ के या जो कुछ भी है। उस समय को रात्रि की निद्रा भंग कर करके प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य लिखा, और वो तात्पर्य और परपट हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये उनकी कृपा से ही। और श्रील प्रभुपाद जी को इतना विश्वास था, और ये सत्य बात है कि भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। तो जब किसी ने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया था कि प्रभुपाद जी आप अमेरिका जा रहे हो, तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, श्रीमद भागवतम अमेरिका जा रहा है। और क्योंकि श्रीमद भागवतम अकेला अमेरिका नहीं जा सकता, मैं साथ में उनका दास बन के जा रहा हूँ। तो ये प्रभुपाद जी का मूड था। तो ये श्रीमद भागवतम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका श्रवण, इसका कीर्तन। कीर्तन मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली हारमोनियम लेके बैठ गए, कीर्तन मतलब जो भागवत जो बोलते हैं वो भी कीर्तन है। इसीलिए जो भक्ति के 9 अंग बताए हैं और उसके जो 9 आचार्य है, तो उसमें श्रवण के आचार्य है परीक्षित महाराज, और कीर्तन के आचार्य है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ने कोई हारमोनियम लेके कीर्तन नहीं किया था, उन्होंने भागवत सुनाया था। तो ये भागवत जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भगवान से अभिन्न है। श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन आता है कि इदम भागवतम नामम पुराण ब्रह्म सम्मितम, कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये भगवान स्वयं है, ये भगवान से अभिन्न है, ये भगवान का साहित्यिक अवतार है। जैसे भगवान अलग अलग अवतारों में आते हैं, तो भगवान जब किसी पुस्तक के रूप में, किसी ग्रंथ के रूप में, किसी साहित्य के रूप में आते हैं, तो वो है श्रीमद् भागवतम। तो हमको इस देश में बैठ के श्रीमद् भागवतम सुनने का, श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, और हमेशा श्रीला प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। कि क्योंकि प्रभुपाद अगर नहीं होते तो ये जो इतना जो प्रचार और इतना जो मॉडर्न लोगों को ये सब जो पता चला, ये शायद नहीं पता चलता था। क्योंकि श्रीमद् भागवतम को जानने और पढ़ने वाले बहुत ऐसे महात्मा है भारत में, उनकी कोई कमी नहीं है, बहुत है, लेकिन किसी ने भी इतने बड़े पैमाने पर प्रचार नहीं किया, है कि नहीं। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया था लेकिन कोई कर नहीं पाया। और एक बार एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से पूछा था कि इतने सारे बाबा साधु और ये लोग आए, किसी ने इतना बड़ा चमत्कार नहीं किया प्रभुपाद जी जो आपने कर दिया। और प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद है, और मैंने केवल तार्किक रूप से कृष्ण कौन है ये समझाया है बस, और लोगों ने समझ लिया उस बात को और उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग जो ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और कई लोग इस दुनिया के अंदर है जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, है कि नहीं, बहुत सारे लोग हैं। और कई बार कई लोग तो ऐसा बोलते भी है कि आप हमको भगवान दिखाओ, और क्योंकि आप भगवान को नहीं दिखा सकते हम भगवान में विश्वास नहीं रखते, ऐसे कई नास्तिक लोग हैं। लेकिन जो आस्तिक लोग है, जैसे भगवान क्या कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् माम यो वेति तत्वत्। कि हजारों करोड़ों मनुष्य में से कोई सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वालों में से भी बहुत कम लोग हैं जो भगवान को तत्व से जान पाते हैं। तो पहली बात तो है कि सारी दुनिया जो है वो नास्तिक है, और उसमें से बहुत कम लोग है जो आस्तिक है, लेकिन फिर भी वो इधर उधर भटक जाते हैं। लेकिन उन आस्तिकों में भी बहुत सारे कम ऐसे लोग होते हैं जो गीता भागवत का आश्रय ले पाते हैं, उसको पढ़ पाते हैं। और जब गीता भागवत को पढ़ते हैं, पर कई लोग जो ऐसे हैं जो मुख्य रूप से वो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, भगवान का दर्शन करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे ऐसे चक्षु हैं, हम भगवान को बरोबर से देख नहीं पाते। कई बार भगवान अगर हमारे सामने राइट नो वन टू वन खड़े भी हो गए, फेस टू फेस, तो भी हम उसको पहचान नहीं पाएंगे, धोखा खा जाएंगे। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने कहा कि डोंट ट्राई टू सी कृष्णा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, उन्होंने ये बात कही थी कि डोंट ट्राई टू सी कृष्णा बट ट्राई टू सर्व हिम इन सच ए वे दैट ही वॉन्ट्स टू सी यू। है ना, समझ में आया आपको? कि भगवान को देखने की कोशिश मत करो, भगवान की इस प्रकार से सेवा करने की कोशिश करो कि भगवान आतुर हो आपको देखने के लिए कि कैसे आप सेवा कर रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है। तो भगवान को हम लोग आंखों से डायरेक्टली ऐसा देख नहीं सकते, तो भगवान को देखने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है, कर्णों के माध्यम से, कान की तरफ से। और इसके लिए एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे भागवत का क्लास दे रहे थे, और कुछ उनके भक्त लोग जो है वो कहीं घूमने के लिए गए थे, और वो वापस क्लास के बीच में आए, लेट आए, और ऑलमोस्ट काफी टाइम के बाद जब आए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनसे पूछा कि कहाँ गए थे आप लोग। तो उन्होंने कहा कि हम स्थानीय मंदिरों के दर्शन करने के लिए गए थे प्रभुपाद जी। तो उन्होंने कहा कि अपने आध्यात्मिक गुरु का श्रीमद् भागवतम पर दिया जाने वाला क्लास छोड़ के मंदिरों में जाना समय की बर्बादी करना है। मैं फिर से दोहराता हूं, आप कान खोल लो ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सको। ये उनका वर्ड्स था। उन्होंने कहा कि आप कान खोल दो ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सको, क्योंकि भगवान को अगर देखना है तो कर्णों के माध्यम से ही देखा जा सकता है, आंखों से नहीं देख सकते हम लोग। जब तक भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, इसलिए श्रवण पे इतना फोकस है कि भागवत जो है वो श्रवण का विषय है ना, वो साक्षात्कार होता है वो श्रवण से होता है। इसीलिए सबसे अच्छा जो तरीका है वह है श्रवण। और मैं आपको उसका उदाहरण देके बताता हूं कि तीन प्रकार से किसी भी चीज का अनुभव किया जा सकता है, राइट। पहला तरीका है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है? सामने, डायरेक्ट। अक्ष मतलब होता है आंख, आंखों के जो सामने होता है। तो डायरेक्ट जो परसेप्शन है कि प्रत्यक्ष, कि किसी चीज को मैं देखता हूं, सुनता हूं, हाथ लगाता हूं या जो कुछ भी है, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो फुल प्रूफ नहीं है, है कि नहीं? जैसे मेरी आंखों का रेंज कुछ दूरी तक ही है, अगर मैं चश्मा हटा लूं तो वहां पे क्या लिखा है मुझे दिखाई नहीं देगा, उसके लिए मुझे ऐनक लगाने पड़ेंगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। तो कुछ दूरी तक ही मैं देख सकता हूं, और कई बार आंखें धोखा खा जाती है, है कि नहीं? ऐसा कई जगहों पर ये लुक्स आर डिसेप्टिव, या फिर जैसे जे दिसते तो नसते म्हणून जग फंसते, ऐसा मराठी में भी है। तो ऐसे हर जगह पे, तो हमारी जो इंद्रिया है वो क्या है, लिमिटेड है। अवर सेंसेस आर नॉट अनलिमिटेड, दे आर वेरी मच लिमिटेड, और इसके लिए हम लोग वो लिमिटेड सेंसेस से केवल लिमिटेड काम कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो फुल प्रूफ नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा प्रमाण क्या है, अनुमान प्रमाण। अनुमान का क्या मतलब होता है, कि आप किसी चीज को देखते हो और अनुमान लगाते हो कि शायद ऐसा होगा, अगर हमने ऐसा देखा है तो इस चीज का अनुमान लगाते हैं। और प्रभुपाद जी एक एग्जांपल भी देते हैं कि जैसे कुछ अंधे लोग थे, उन्होंने एक हाथी को पकड़ा अलग अलग जगह से, और जिस किसी ने हाथी को जहां से पकड़ा उसने हाथी का वर्णन उसी प्रकार से किया। कि जैसे किसी ने हाथी को सूंड पे जाके पकड़ा तो उसने क्या कहा, हाथी कैसा है, एक हॉर्स पाइप के जैसा है, पाइप जैसा है वो। किसी ने हाथी का पैर पकड़ा तो बोला हाथी कैसा है, एक पिलर के जैसा, एक खंभे के जैसा। किसी ने हाथी का पेट पे हाथ लगाया तो उसको लगा एक दीवाल के जैसा हाथी है, और किसी ने पूंछ पकड़ी तो उसको लगा रस्सी के जैसा हाथी है। लेकिन वो अनुमान लगा रहा था क्योंकि उसने रस्सी का अनुभव किया है, खंभे का अनुभव किया है। लेकिन अनुमान प्रमाण जो होता है वो भी इनकम्प्लीट है, बरोबर समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए तीसरा प्रमाण जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है शब्द प्रमाण। शब्द तो शब्द जो है वो शब्द ब्रह्म जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और कई बार हम लोग इस एग्जाम्पल के ऊपर बात किए हैं कि अगर किसी को ये पता लगाना है कि मेरा पिता कौन है तो वो बहुत सारे एक्सरसाइज करके देख सकता है, प्रत्यक्ष और अनुमान, लेकिन पता नहीं लगेगा। सो बेस्ट क्या है, गो एंड आस्क योर मदर, ओके, एंड शी विल टेल दैट दिस इज योर फादर। सो ये शब्द प्रमाण है। तो इसीलिए भगवान कौन है अगर हमको ये समझना है तो हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान को देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका कारण भी है कि भगवान जो है वो आध्यात्मिक है और हम लोग जो है भौतिक है। तो भौतिक जो चीज है वो अध्यात्म को नहीं देख सकती, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो या तो हम आध्यात्मिक बन जावे तो फिर हम इस दुनिया से चले ही जाएंगे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अनुमान कितना भी लगाओ कि भगवान ऐसे हैं वैसे हैं ऐसा करके, पर उससे कुछ फायदा नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग भगवान का चित्र बनाते हैं विदाउट नोइंग। तो एक बार ऐसा ही हुआ था कि प्रभुपाद की एक शिष्या ने कृष्ण का एक चित्र बनाया और कृष्ण में उसको एकदम मस्कुलर मैन सिक्स पैक वाला ऐसा बना दिया, क्योंकि वो सीन था चाणूर और मुष्टिक के साथ फाइट करने वाला, कि कृष्ण और बलराम वो मथुरा में जा रहे हैं और चाणूर और मुष्टिक के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो उनको लगा कि चाणूर और मुष्टिक तो इतने बड़े मल्ल के पहलवान हैं वो लोग, तो वैसा मैं बनाती हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो है ये सही नहीं है। भगवान जो है वो वैसे ही किशोर अवस्था में रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनका कोई सिक्स पैक्स आ गया या कुछ हुआ, वो बिल्कुल है और वो अपनी इच्छा से बहुत कुछ कर लेते हैं। जैसे भगवान ने जब पूतना का वध किया तो ऐसा नहीं था उन्होंने पूतना का, ये थोड़ी देर रुक जरा मेरे को बड़ा होने थे बाद में तेरे से युद्ध करता हूँ। भगवान छोटे से बालक थे, कुछ दिनों के थे, कुछ दिन के अंदर ही उन्होंने पूतना को मार दिया। वैसे ही इतने छोटे से थे तभी कितने सारे असुरों का भगवान ने वध कर दिया, भगवान को बड़ा नहीं बनना पड़ा। इंडीड जब गोवर्धन भी उठाया भगवान ने तब भी ऐसा नहीं था कि कोई मैचो मैन बन गए और बहुत बड़े बन गए भगवान, या जैसे ऐसा होता ना कि कभी कभी हमने वो फिल्मों में या कॉमिक्स में देखा है कि यू नो चाचा चौधरी का साबू फटक से सब बड़ा बन जाएगा, या जैसे अपना कद वद बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती भगवान को, ऑटोमेटिक बस भगवान जैसे हैं वैसे ही सारा काम वो कर लेते हैं। तो अनुमान लगाने से भी कुछ नहीं होगा। तो शब्द जो है वो बहुत जरूरी है, और हमारे जो शास्त्र है वो हमारी माँ के समान है, वो हमको बताते हैं कि भगवान कौन है। तो इसके लिए अगर भगवान का दर्शन करना है, भगवान को देखना है, तो किस प्रकार से देखना चाहिए भगवान को? कर्णों के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से। इसके लिए हमारे भक्ति के जो प्रोसेस है, नवधा भक्ति जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम नंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ भक्ति के अंग है। और इन नौ भक्ति के अंगों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि दो अंग बहुत महत्वपूर्ण है और वह है श्रवण और कीर्तन। तो ये दो बहुत जरूरी है कि युग धर्म जो है वो हमारा कीर्तन है, और भगवान को समझना है और अपने आप को समझना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है श्रवण। तो पहले जब आदमी श्रवण करेगा तो अच्छी तरह से कीर्तन भी कर पाएगा। इसके लिए श्रवण जो है वो बहुत जरूरी है। और ऐसा देखा गया है कि भगवान को, जैसे कई लोग बोलते हैं कि नहीं हमको भगवान हमारे सामने प्रकट करो, जैसा मैं भी कह रहा था, तो भगवान ऐसे प्रकट नहीं होते। लेकिन बहुत बड़े चढ़े भक्तों ने ऐसा बोला है कि अगर आप भागवत का आश्रय लेते हो, भागवत का श्रवण करते हो, तो भगवान आपके सामने वहां प्रकट हो जाते हैं, है कि नहीं? सही बात है। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं ये बात कही है। ऐसा कहा है कि जहां पर भी रामायण की कथा होती है वहां पर हनुमान जी और भगवान राम वहां प्रकट रहते हैं। तो वैसे ही जब भागवत की कथा होती है तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट होते हैं और होते ही है कि नहीं? नारद मुनि ने पूछा भगवान से कि भगवान कभी कभी मैं घूमते रहता हूँ इधर उधर, लोग आपका विजिटिंग कार्ड मांगते हैं, थोड़ा कार्ड दे दो मेरे को। भगवान ने बोला यार मैंने तो प्रिंट ही नहीं किया कार्ड, कहाँ से तू तेरे को? तो बोला क्या बताऊँ उनको, ऐसा बोलो आप वैकुंठ में रहते हो? तो बोला कि नहीं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता। तो बोला अच्छा, योगी लोग जो आपकी तवली तपस्या करते हैं उनके हृदय में रहते रहोगे? तो बोले योगी नाम हृदयेषु वा, कि मैं योगी के हृदय में भी नहीं रहता। तो बोले कहाँ रहते हो? बोलते यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, कि जहां पर भगवान मतलब कि जो वहां जो भक्त है वो बैठकर मेरा कथन करते हैं, मेरा गायन करते हैं, मेरी कथा करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, वहां पर मैं नारद रहता हूँ। और इसका आपको एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल मैं आज देता हूँ जो आपको समझ में आएगा। ये हमारे सामने जो विग्रह है भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इनकी ऐसी हालत क्यों हुई। ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप भगवान का ऐसा क्यों है, किस वजह से है? कथा सुनने से है। ये स्वरूप उनका ऐसा हुआ है केवल कथा सुनने की वजह से, है कि नहीं? आपको थोड़ा सा 5 मिनट में मैं इसका डिटेल बताता हूँ जो नया है उन लोगों के लिए, कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में थे तो कई बार रात को वो उठ जाते थे और उठ के और एकदम भाव विभोर होकर चिल्लाते थे कि हे राधे, हे राधे, हे गोपी, हे नंद, यशोदा, इस प्रकार से। तो उनकी कितनी रानियां थी भगवान की द्वारका में? 16,108 रानियां। उनको कभी समझ में नहीं आया कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ऐसा अचानक रात को उठ जाते हैं। और खैर कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन हमेशा वो सोचते रहते थे कि ऐसा क्या है राधा रानी में, नंद यशोदा में और बाकी के गोप गोपी में, कि भगवान इतना उनके विरह में रहते हैं। तो वे सुनना चाहती थी, जानना चाहती थी, लेकिन द्वारिका में केवल 3 ऐसे लोग थे जो वृंदावन में थे और द्वारिका में थे। कौन कौन थे वो 3? कृष्ण थे, बलराम थे और बलराम जी की माँ रोहिणी थी। तो बलराम जी से पूछ नहीं सकते, वो उनके जेठ थे, तो उनसे नहीं पूछ सकते थे। तो जाके एक बार उन्होंने रोहिणी से पूछा और रोहिणी को कहा कि हमें बताओ जरा कृष्ण के बारे में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पे कि कृष्ण वहां पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आया और उसने सुन लिया तो वो द्वारका छोड़ के चला जाएगा वो सीधा वृंदावन में, क्योंकि अगर उनके बारे में उन्होंने सुन लिया तो तुम लोग पीछे लटक जाओगी, ये रिस्क उठाना है क्या? तो उन्होंने कहा उठाएंगे रिस्क, बोलो। तो भगवान की कथा सुनने के लिए रिस्क उठाना चाहिए कभी कभी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन द्वार पे उन्होंने सुभद्रा को खड़ा कर दिया और उसको कहा कि कृष्ण और बलराम आए तो एंट्री मत देना, उधर ही द्वार पे खड़ी रहना तुम। तो अंदर पूरा मस्त एकदम हॉल के अंदर बैठ गए और रोहिणी उनको कथा सुनाने लगी कृष्ण के बारे में। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही कृष्ण की कथा शुरू होती है, कृष्ण वहां पे आ जाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने कथा सुनानी शुरू की, कृष्ण वहां पर आ गए, कृष्ण और बलराम दोनों पे, और यशोदा उधर खड़ी थी, सुभद्रा बोली नो एंट्री, अंदर नहीं जा सकते आप। तो कृष्ण ने बोला क्या चल रहा है अंदर? बोला कुछ भी चल रहा है, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम खड़े रहो इधर ही। तो फिर कृष्ण ने बोला अरे, क्योंकि कृष्ण बात करने में बहुत निपुण है, बहुत पटु है, उनसे बात करने में कोई नहीं जीत सकता, वो सभी को हरा देते हैं और ऐसा तर्क देते हैं। तो उसको कहने लगे सुभद्रा को कि देख, तू तो मेरी बहन है, छोटी बहन है, तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, है क्या नहीं? अर्जुन से तेरा विवाह कैसे करवाया मैंने, याद है ना तेरे को? और तूने राखी बांधी थी, तेरे को मैंने कुछ दिराम दिया था उस समय तो कुछ और ही होगा। तो ऐसा करके तो बात करवाने लगे और सुन रहे थे अंदर क्या चल रहा है। और जैसे ही सुन रहे थे तो उनकी स्वकथा, श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विद्युनोति सहस्रताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो भगवान श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण, कृष्ण अपनी कथा सुन के और बहुत आनंदित होते हैं, बहुत भावविभोर हो जाते हैं। ऐसा हमारे बारे में भी तो होता है ना, कि अगर कोई हमारे नाम लेता है तो तुरंत कान खड़े हो जाते हैं, कह रहे क्या बोल रहा है कि नहीं? तुरंत अगर समझो हम कथा भी चल रही है, कुछ हो रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर आदमी का अगर हमने नाम लिया तो तुरंत कान उधर चले जाते हैं। और अपने बारे में सुनना सभी को अच्छा लगता है, चाहे ह्यूमिलिटी में लोग बोल दे कि नहीं नहीं प्रभु जी क्या, जैसे कोई किसी ने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया है और आके कहता है, कह रहे माता जी आपने कितना अच्छा प्रसाद बनाया, तो भले हम बोल दे अरे नहीं नहीं ये सब कृष्ण की कृपा है, क्या है मेरे को तो कुछ नहीं आता है ऐसा करके, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा फील होता है कि हाँ सही है। या किसी कोई ग्लोरीफाई करता है तो ऊपर से भले ही हम बोल दे कि नहीं क्या प्रभु जी ये सब तो भगवान की कृपा है, मैं तो एकदम गिरा हुआ इंसान हूँ या जो भी है, इतना कुछ बोल दे, लेकिन कभी कभी अंदर से ऑब्वियसली सच्चा भक्त ऐसा नहीं सोचता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे शायद कि यार बस इतना ही बोला थोड़ा और थोड़ा और बोलना था, यू नो, इतना ही बस खाली मेरा ग्लोरिफिकेशन किया। थोड़ा और कहे कि अनंत शेष अपने हजारों फणों से भी मेरा गुणगान नहीं कर सकता। तो ये कहां से भावना आती है? ये भावना कृष्ण से आती है। तो इस संसार में जो कुछ भी है उसका ओरिजिनल स्वरूप उधर है और ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। तो कृष्ण भी खुद सुनना चाहते हैं अपने बारे में। तो सुनते 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 क्या हुआ कि कृष्ण को बहुत बड़ी स्माइल आ गई अपने बारे में सुनते सुनते, और उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई, उनका चेहरा एकदम पूरा बड़ा हो गया। और ऐसा कृष्ण बलराम और सुभद्रा तीनों को हो रहा था। और धीरे 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 अष्टविकार उनमें आने लगा, और अष्टविकार आते आते उनके हाथ और पैर जो थे वो शरीर के अंदर जाने लगे और शरीर छोटा हो गया। और इतना सुपर स्माइल और इतना सब कुछ था। तो जब ऐसा चल रहा था तो उस समय अचानक श्री नारद मुनि वहां पर प्रकट हो गए। तो नारद मुनि जो है ये एक ऐसी पर्सनालिटी है, यू नो, जिसको भारत ने अब तक समझा नहीं है ढंग से। और मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा। क्योंकि ऐसे नारद मुनि जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे भारत के लिए और हमारे वैदिक लिटरेचर के लिए एकदम फैंटास्टिक है, उसको लोग किस प्रकार से फिल्मों के अंदर बताते हैं, ये जान के बड़ा एकदम दुख वाली बात है। तो नारद मुनि देखो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। श्रीमद भागवतम किसकी देन है? नारद मुनि की। नारद मुनि ने आदेश दिया था व्यासदेव जी को कि आप श्रीमद भागवतम की रचना करो, तो इसके लिए श्रीमद भागवतम की रचना हुई। तो हम लोग जो बैठ के पढ़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो नारद मुनि को ही जाता है। तो नारद मुनि के कहने पे वेद व्यास जी ने श्रीमद भागवतम की रचना की। ठीक है,
पार्वती जी को उसी नारद जी के उससे सुनाया।
हाँ, और रामायण कैसे आई?
नारद
जी की वजह से। कैसे? क्योंकि वाल्मीकि जो थे जब वो डाकू थे तो उनको नारद मुनि ने प्रीच किया, ठीक है ना? नारद मुनि ने उनको प्रीच किया और उनको बताया कि आप रामायण की रचना करो। तो रामायण भी जो है वो नारद मुनि से आई, भागवतम भी जो है वो नारद मुनि से आया। और वैसे जो भगवान के बड़े बड़े महान भक्त हुए हैं उनको भी प्रचार किसने किया? उठा लो उसको भी प्रचार किसने किया? नारद मुनि ने। ध्रुव महाराज को प्रचार किसने किया? नारद मुनि ने। प्रहलाद को प्रचार किसने किया? नारद मुनि ने। प्रचेतास को प्रचार किसने किया? नारद मुनि ने। हर जगह नारद मुनि है, लेकिन भारत के अंदर पर्टिकुलरली सिनेमा और टेलीविजन नारद मुनि को कैसे डिपिक्ट करते हैं? झगड़ा लगाने वाला है कि नहीं? नारद मतलब कौन? जो झगड़ा लगाने वाला, कलह प्रिय नारद, ऐसा करते हैं। कितना सोचो कितना बड़ा अपराध है ये हम भारतीय लोगों का और उन लोगों का जो नारद मुनि को ऐसा डिपिक्ट करते हैं कि ये झगड़ा लगाने वाले हैं। एक्चुअली नारद मुनि जो है वो भगवान की लीला को ट्रिगर करते हैं कि जब उसमें आनंद की और जब बढ़त करनी रहती है तब नारद मुनि वहां पर पहुंचते हैं और उसको आगे लेके जाते हैं। तो नारद मुनि की वजह से भागवत आया, नारद मुनि की वजह से रामायण आई। नारद मुनि ने ही इज द यूथ प्रीचर, इतने लोगों को प्रीच कर करके और उन्होंने भक्ति के अंदर लेके आए। तो नारद मुनि वहां पर प्रकट हो गए और जब उन्होंने देखा कि कृष्ण बलराम और सुभद्रा का ऐसा स्थिति है, और तुरंत उन्होंने वहां पर उनको दंडवत लगाया। लेकिन जैसे ही दंडवत लगाया भगवान को तो सब कुछ मालूम है, अंतर बाहर दो भी है। तो तुरंत आप वापस से अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गए और नारद मुनि गिड़गिड़ाने लगे और उनको कहने लगे कि अरे भैया, वो चिल्लाने लगे, वो बोले मैंने देख लिया। और फिर उन्होंने ये प्रार्थना की कि हे भगवान, ये जो स्वरूप मैंने आपका देखा है ये स्वरूप आप सबके सामने प्रकट करो। तब कृष्ण ने कहा कि जब मैं कलयुग में आऊंगा तब मैं जगन्नाथ के रूप में सब लोगों को अपना दर्शन दूंगा। तो ये भगवान जगन्नाथ की हालत ऐसी क्यों हुई है? कथा सुनने से। भगवान ने स्वयं अपनी जब कथा सुनी तब, तो ये इस सिद्धांत का जीता जागता एक ज्वलंत उदाहरण है कि भगवान की कथा सुनने से क्या होता है और किस प्रकार भगवान की कथा सुननी चाहिए, किस प्रकार भगवान अपनी कथा सुनते हैं। श्रणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कि भगवान जो स्वयं अपनी कथा सुनने के लिए इतने आतुर रहते हैं तो हमको कितना आतुर रहना चाहिए कि जब कथा होती है, क्योंकि भगवान में और भागवत में कोई अंतर नहीं। तो ये भगवान जगन्नाथ जी हमको ये एक सीख भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान की कथा सुननी चाहिए। आप लोगों में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए? तो जो नहीं गए हैं वो जाने से पहले चले जाइएगा। क्योंकि जगन्नाथ जी जो है बहुत ही विशेष भगवान है, ये कलयुग के भगवान है हमारे, और जगन्नाथपुरी के अंदर भगवान केवल एक कार्य करते हैं जो हम सबको पसंद है। ऐसा हो सकता है कि किसी लोगों को या बहुत लोगों को कथा में नींद आती होगी या समझ में नहीं आता होगा या कभी कभी हमारा मन इधर उधर भटकता होगा, प्रसंग कहीं से कहीं चला जाता है। ऐसा हो सकता है जप के अंदर कई लोगों को नींद आती है, कीर्तन के अंदर समझो किसी को आनंद नहीं आता होगा, लेकिन एक एक्टिविटी जिसमें सबको आनंद आता है और वो क्या है,
प्रसाद।
प्रसाद खाने के लिए सभी को आनंद आता है और जगन्नाथपुरी इस चीज का प्रतीक है कि भगवान की भक्ति केवल प्रसाद खाने से हो सकती है बस। तो कोई व्यक्ति अगर जगन्नाथपुरी में जाके भगवान का प्रसाद खाता है तो भी भक्त बन जाएगा, और वहां पर एकादशी भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो कई बार जो एकादशी पे हमको पता चलता है कि कृष्णा इज द टेस्ट ऑफ वाटर, उसके पहले नहीं पता चलता है। जैसे निर्जल एकादशी पे जब हम उपवास करते हैं तब ये तथ्य जो है भगवान ने गीता में जो कहा है तब समझ में आता है कि कृष्णा इज द टेस्ट ऑफ वाटर। सो भगवान का केवल प्रसाद खाने मात्र से कोई व्यक्ति भक्त बन सकता है और उसकी इतनी महिमा है। एनीवे वो हम उधर बोलेंगे तो अलग से टॉपिक में चले जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हम किस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे कि सबसे पहले भगवान को अगर देखना है तो आंखों से मत देखो, कहां से देखो, कानों से। भगवान को अगर देखना है, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा बट ट्राई टू सर्व हिम इन सच ए वे दैट ही वॉन्ट्स टू सी यू। तो भगवान को देखना है तो कानों से देखो, श्रवण करो। तो ये बहुत जरूरी है, पहला मुद्दा है श्रवण जो भागवत के अंदर। और जो मैं एक बात बोल रहा था अभी कि भागवत सुन के भगवान को वहां प्रकट किया जा सकता है, और यही मुद्दे पे हम टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे कि जहां पर भागवत चर्चा होती है वहां पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे जगन्नाथ जी का उदाहरण है कि भगवान जगन्नाथ मतलब कृष्ण के बारे में जो कहा जा रहा था जगन्नाथ जी वहां पर आकर प्रकट हो गए। और कुछ भक्त तो ये भी बात बताते हैं, और आई थिंक व्यासदेव जी ने यह कहा है कि अरे भागवत सुनना तो बहुत दूर की बात है, वो तो कहते हैं कि दैट्स अ वेरी डिफरेंट यू नो थिंग, बहुत दूर की बात है। केवल केवल कोई व्यक्ति ऐसी इच्छा करे कि मैं भागवत में जाऊंगा, इच्छा करने मात्र से उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो जैसे कोई अगर घर पे बैठा है और किसी कारणवश यहां पर नहीं आया या नहीं आ पाया जिस भी कारण से, लेकिन उसकी ऐसी इच्छा है कि नहीं मैं भगवान मैं सुनना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, उतने उतने मात्र से ही, केवल सुनने मात्र से ही जो है वो भगवान प्रकट हो जाते हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि हम उस प्योर लेवल पे नहीं, इसलिए हमको इसका साक्षात्कार नहीं होता है, लेकिन ऐसे कई एग्जाम्पल है कि जिसके अंदर जिस व्यक्ति ने बस केवल इच्छा जाहिर की, और स्पिरिचुअल लाइफ में यही एक बेनिफिट है। सी मटेरियलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी में एक ही डिफरेंस है कि मटेरियलिटी में क्या होता है कि आप जब कुछ चीज करते हो तो उसका आपको फायदा मिलता है, या यूं कहूं कि कलयुग के अंदर एक बहुत अच्छी चीज जो है वो भगवान ने दी है कि कलयुग के अंदर अगर आप पाप करते हो तो उसका आपको फल मिलता है जो सच में किया गया पाप है, लेकिन अगर मन में किया गया पाप जो है उसका फल नहीं मिलता है। ऐसा है, हालांकि करना नहीं चाहिए क्योंकि मन से ही फिर करने वाला व्यक्ति सही में पाप करने चला जाएगा। जैसे भगवान ने गीता में कहा था और हमने डिस्कस किया था कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषूपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कि व्यक्ति का जो पतन हो जाता है वो यहाँ से होता है, ध्यायते विषयान पुंसा, के वो सोचता है और वो सोचने से बस वो एक्शन में आ जाता है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में कैसा है कि अगर आपने सोचा तो भी उसका बेनिफिट मिल जाता है, कि किसी ने समझो अगर सेवा की तो उसका तो बेनिफिट उसको मिलेगा ही, लेकिन सेवा नहीं भी की और किसी ने सोचा कि चलो आज मैं प्रोग्राम में ये हेल्प करूंगा, इतना सोचने मात्र से ही उसको उसका फल प्राप्त हो जाता है। तो बोलते कि भागवत में आके बैठ के सुनना तो बहुत दूर की बात है, केवल कोई व्यक्ति ने ऐसा सोच भी लिया कि मैं भागवत में जाऊंगा तो उसका भी फल मिलता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम सोचते रहे और आए नहीं। आओगे तो ज्यादा फल मिलेगा, है क्या नहीं? तो आप डिसीजन आपको लेना है कि कम फल चाहिए कि ज्यादा चाहिए। क्योंकि भगवान देखो ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति समझो आके भागवत में सो भी गया, जो कई बार बहुत नॉर्मल है कि कई बार ऐसा व्यक्ति आके सो जाता है, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, वो जानबूझ के पीछे बैठते हैं कभी कभी तो जो पीछे बैठे हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरे को गलत मत समझिएगा, लेकिन लेकिन पीछे बैठते हैं ऐसा ऐसा, मैं मतलब बड़े बड़े पंडालों में होता है, मैं पंडाल की बात कर रहा हूँ कि जब इंडिया में जो पंडाल लगता है बहुत बड़े बड़े पंडालों के अंदर लोग पहले ही पीछे बैठते हैं और कोई एक लंबे आदमी के पीछे जाके बैठते हैं ताकि स्पीकर उनका चेहरा भी नहीं देख पाए वो क्या कर रहे हैं, फिर वो नीचे व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ चलता रहता है या फिर झपकी लग जाती है। तो भगवान क्या देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि वो पीछे बैठा है या फिर वो व्हाट्सएप पे कुछ कर रहा है या सो गया है। भगवान ऐसा सोचते हैं कि सोया तो सोया, कम से कम यहां पर आकर सोया, घर पर नहीं सोया है कि नहीं, कम से कम इतना प्रयास उसने किया है कि यहां पर आके सोया है। और क्योंकि हृदय में कलमश है, धीरे 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 साफ होएंगे, निकलते जाएगा और नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवा, जितना इतना भागवत सुनते जाएंगे हमारे हृदय के कलमश जो है वो निकलते जाएंगे, साफ होंगे। लेकिन कुछ लोग जो पंडाल में पीछे बैठते हैं तो कभी कभी झपकी लगती है और ऐसा जो पंडाल का खंभा होता है ना, कई लोग ऐसा खंभे से एकदम बैठ के ऐसा टेका लेके बैठ जाते हैं क्योंकि टेका लेने की आदत रहती है, तो कभी बैठ बैठ के जब झपकी आती है तो पंडालों में क्या होता है कि ओपन पंडाल होते हैं कई बार, तो वहां पर कुछ कुत्ते वुत्ते घूमते रहते हैं और कुत्तों को खंभों से बहुत प्यार होता है, तो कई बार क्या होता है कि कुत्ता देखता है खंभा है तो वहां पर आके अपना कार्य कर देता है। तो एक व्यक्ति ऐसी मुंह खुला करके सोया था तो कुत्ता वहां पर आया और उसको प्रसाद देके चला गया। और जब कथा खत्म हुई तो कुछ लोगों ने बहुत, क्योंकि लोग चर्चा करते हैं, असली भक्त जो होता है जब भागवत बंद होता है अपने हृदय में भागवत खोलता है और उसके बारे में बोलता है तो कोई बोला अरे आज प्रभु जी ने कितना अच्छा बताया, इतना अच्छा मतलब कथा हुई और ऐसा लग रहा था कि एकदम अमृत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो वो भी सोचने लगा यार प्रवाह तो हुआ था लेकिन थोड़ा खारा था। तो एनीवे, तो सोचने मात्र से ही अगर कोई ऐसा सोचता है कि नहीं मैं भागवत सुनना चाहता हूं तो भगवान उसको उसका फल दे देते, बेनिफिट दे देते तुरंत ही। तो इसके लिए कहते हैं कि यश्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहे। और वो कहते हैं कि कालेन न अति दीर्घेण भगवान वसती हृदय, कि क्या होते हैं स्वचेष्टितम, कि कोई अगर चेष्टा, चेष्टा मतलब इच्छा करता है कि भगवान का कथा सुनने का इच्छा करता है वो, कि स्वचेष्टितम कालेन न अति दीर्घेन, कालेन मतलब इस समय में और न अति दीर्घेन, दीर्घ मतलब होता है बहुत दूर, अति दीर्घेन मतलब होता है बहुत ही लंबा, न अति दीर्घेन मतलब होता है कि बिल्कुल ही एकदम इमीडिएटली, कालेन न अति दीर्घेन भगवान वसती हृदय, कि भगवान आके क्या करते हैं सीधा हृदय के अंदर बैठ जाते हैं, है क्या नहीं। तो भगवान हृदय के अंदर बैठते हैं तो ऐसे आके नहीं बैठते, उसके लिए भी सफाई करनी पड़ती है, इसलिए जगन्नाथ की जब रथ यात्रा निकलती है तो उसके पहले लोग गुंडीचा मार्जन करते हैं, पूरा मंदिर अंदर धोते हैं और तब आके भगवान बैठते हैं। लेकिन कई लोगों का अपना अलग अलग भाव होता है, तो एक बार एक कवि ऐसा भाव प्रकट कर रहा था, उसने कहा कि कृष्ण मैंने इतने सारे देवी देवताओं को और सबको देखा है लेकिन कोई मेरे हृदय में फिट नहीं बैठता है, खाली आप ही बैठते हो। क्यों? क्योंकि मेरा हृदय बहुत टेढ़ा है और आप भी टेढ़े हो, है कि नहीं। तो टेढ़े हृदय में टेढ़ा आदमी फिट हो सकता है, सीधा आदमी वो फिट नहीं होगा। तो इसके लिए कई भक्त ऐसे होते हैं जिनका इस प्रकार से भाव होता है भगवान के प्रति, तो इस प्रकार से भगवान की इच्छा करते हैं। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अगर इच्छा भी करते हैं कि नहीं हमको भागवत सुनना है, भागवत पढ़ना है, जो करना है, तो भगवान उसमें से भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हमको अपना लाभ देते हैं। और वो कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनने की रुचि रखता है या जो इच्छा करता है स्वचेष्टितम, कि भाई आज मैं भागवत सुनूंगा या मुझे सुनना है या कुछ करना है, ऐसा करके भगवान उसका ध्यान कैसे रखते हैं, तो बताया कि भगवान उसका ध्यान उसी प्रकार से रखते हैं जिस प्रकार से एक लोभी व्यक्ति अपने पैसों का ध्यान रखता है। ऐसा एक एग्जांपल दिया है कि लोभी व्यक्ति अपने अपने पैसों का ध्यान कैसे रखता है, तिजोरी में रखता है और बार बार उसको देखते रहता है कि नहीं। या तिजोरी जब बंद करता है, आपने समझो ज्वेलरी रखी है, डायमंड रखा है उसके अंदर, तो 5-7 मिनट तो खाली तिजोरी को हम लोग खींचते रहते हैं कि बंद बरोबर से हुई कि नहीं हुई, है कि नहीं। वो उसको एकदम अंदर रख के तिजोरी के अंदर और वो चेक करते रहता है। तो कई बार, एक बार हमारे परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज ये बात बोल रहे थे कि वंस यू हैव मेड एन एफडी, कि आपने बैंक के अंदर अगर एक एफडी बना ली है, सो इट इज अर्निंग इंटरेस्ट. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लुकिंग एट एफडी एवरी सिंगल डे? कि रोज रोज इस एफडी को देख के मतलब क्या है, है ना? अपना इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन व्यक्ति इतना लोभी होता है कि रोज रोज अपना अकाउंट में लॉग इन करके देखता है कि क्या बैलेंस है कि नहीं. कई लोग ऐसे करते रहेंगे, तो बार बार देखता है कि क्या है क्या नहीं है. तो जो लोभी व्यक्ति ऐसा करता है, तो किसी ने ऐसा कहा कि असत माम जन्म उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसी है बसी हो धन जैसे. बोले कि भगवान जो है वो किस प्रकार से उसका उसको देखते हैं, तो बोलते उसी प्रकार से भगवान देखते हैं कि जिस प्रकार से एक लोभी व्यक्ति जो है वो अपना धन देखता है. तो ऐसा व्यक्ति जो है भगवान उस पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं. कैसे व्यक्ति पे? कि जो भगवान को सुनने की कोशिश करता है, जो भगवान का गुणानुवाद करता है. तो गीता के अंदर भगवान ने लास्ट में यही बात कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस संदेश का प्रचार करता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है. कि नहीं? भगवान ने बहुत सारे लोगों के बारे में बताया है, और उन्होंने कहा कि योगी नाम अपि सर्वेशाम यद मदगत मंत्रात्मना श्रद्धावान यो भजते माम. तो बोले कि जो मुझसे श्रद्धा से करता है वो योगी महान है. वो सब कहने के बाद भगवान लास्ट में क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति, पहले तो ये कहते हैं कि अश्रद्धालु व्यक्तियों को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो लोग ऐसे भी अपराध करके बैठेंगे. लेकिन जो व्यक्ति बताता है वो भगवान को बहुत प्रिय है. तो भगवान के लिए इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति प्रिय है, और वो है उनका भक्त. और हम सब जानते हैं कि भगवान ने अपने भक्त को बचाने के लिए, अपने प्रेमी भक्तों के लिए क्या क्या नहीं किया है कि नहीं, किस हद से नहीं गुजर गए. कई बार क्या होता है कि कोई एक प्रेमी होता है, वो अपनी प्रेमिका को पाने के लिए कई हदें पार कर देता है, कई हदों से गुजरता है. तो वैसे ही भगवान जो है वो अपने भक्तों को बचाने के लिए, क्योंकि उससे इतना प्रेम करते हैं, वो कई हद पार कर जाते हैं. कई भगवान ने जो अपने खुद का प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को तोड़ दिया. कौन सा एपिसोड में? भीष्म पितामह वाले. कि भीष्म पितामह वाले एपिसोड में भगवान ने ये कसम खाई थी कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा. लेकिन जब भीष्म पितामह ने इतना भयंकर घमासान युद्ध किया अर्जुन के साथ में, और अर्जुन को पूरा छलनी छलनी कर दिया अपने बाणों से, और इवन कृष्ण को, और जब कृष्ण ने देखा कि अभी अर्जुन तो कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तो वे उतरे और रथ का पहिया उठा के और भागे तुरंत, और जाके चार्ज करके और भीष्म पितामह पे गए मारने के लिए. और जैसे ही अर्जुन ने ये सीन देखा, अर्जुन उतरा नीचे और भाग के कृष्ण के पैर को पकड़ा, बोला अरे आप क्या कर रहे हो, आप अपनी प्रतिज्ञा कैसे तोड़ सकते हो. लेकिन वो रेडी थे उन पे आक्रमण करने के लिए. और जब भीष्म ने ये सीन देखा, तो भीष्म तो उनके सबसे बहुत ही प्रिय भक्त हैं, 12 महाजन में से एक है. तो उन्होंने अपना हाथ आगे कर दिया और कहा आ जाओ कृष्ण, मैं यही चाहता था कि तुम तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़ के, मतलब उन्होंने उनकी प्रतिज्ञा तोड़वा दी और कहा कि मारो. और जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर थे, जब युद्ध खत्म हो गया और कृष्ण उनसे मिलने के लिए आए, तो भीष्म पितामह ने उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं की. और वो प्रार्थना इस फर्स्ट पहले स्कंद में ही है जो हम आगे पढ़ेंगे, कुंती की प्रार्थनाएं और भीष्म पितामह. तो इतनी अच्छी प्रार्थनाएं उनसे की, और कृष्ण को इतना अच्छी तरह से उन्होंने कहा, और वो सीन याद कर रहे थे जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, कि कृष्ण जो है वो पूरा का पूरा उनका जो शरीर जो है वो खून में लथपथ है. उन्होंने अपने बाणों से उनको घायल किया है, और घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल जो है वो उनके माथों में लगी है, और उनका केशव जो उनका नाम है, जो उनके घुंघराले बाल है, उस बालों के अंदर ये सब धूल से दूषित हुआ है. और वो एक पहिया उठाकर उनके ऊपर चार्ज करने आए हैं. तो ऐसा सीन देखते हैं, और भीष्म पितामह उनसे प्रार्थना करते हैं, और बहुत ही सुंदर प्रार्थना है. हम लोग थोड़े टाइम के बाद जब इस सेक्शन में आएंगे तो इसको पढ़ेंगे, और इतना आनंद आएगा. तो कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि सुसुपुग पगते क्वचित हर तुम प्रकृति गुणे यस यद्भव प्रवाह. ये एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, लेकिन हम लोग याद करेंगे इस स्तुति को भी, कि इतना बेस्ट स्तुति करते हैं भीष्म पितामह, और वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरी मति जो है वो बस आपके अंदर फिक्स हो जावे, मैं यही चाहता हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहता. और इतना प्रेम करते थे कि भगवान श्री कृष्ण जब वो जो प्राण छोड़ने के लिए गए, तो जानबूझ के कृष्ण उनके सामने गए, क्योंकि कृष्ण ने ये बात भगवद गीता के अंदर भगवान ने जो सिद्धांत दिए हैं उस सिद्धांत का एप्लीकेशन भागवत में बताया है। गीता के अंदर भगवान ने बहुत सारे सिद्धांत कहे और उसमें से एक सिद्धांत क्या है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, के जो भी मरते समय जिस इच्छा को लेके मरता है उसी भाव को वो ग्रहण कर लेता है, और अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, के जो व्यक्ति अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है वो केवल मुझे ही पाता है। तो सोचो हमारे टाइम भगवान आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है हमारे हमारी साधना पे, हमारे भाग्य पे, और जितना कुछ हमने कुछ किया है। पर उस समय कृष्ण भीष्म पितामह के सामने आके खड़े रहे, है ना, जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के सामने आके खड़े हुए थे और हरिदास ने कहा कि बस आपका मुंह देखता देखता और श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य बोलते बोलते मैं इस धरातल से जाना चाहता हूं, तो वैसे ही भीष्म पितामह के सामने वो आके खड़े रह गए। तो इतना प्रेम करते हैं, तो सोचो अर्जुन को बचाने के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया। जयद्रथ, जब अर्जुन ने ये कसम खाई कि कल शाम को सूर्यास्त के पहले अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो अग्नि समाधि ले लूंगा, और पूरा के पूरी कायनात लग गई जयद्रथ को बचाने के लिए, पूरा कौम जो था कौरवों का उनका एक ही उद्देश्य था उस दिन कि जयद्रथ तक अर्जुन नहीं पहुंचे, और अगर ऐसा हुआ तो अर्जुन मर जाएगा, और अर्जुन मरा मतलब युद्ध खत्म हो जाएगा सब कुछ। लेकिन क्या कृष्ण ऐसा होना देने चाहते थे? तो उन्होंने क्या किया, अर्जुन ने इतना घमासान युद्ध किया, ऐसा बताते हैं कि अर्जुन का जो बेस्ट एफर्ट था वो उसने उस दिन डाल दिया जयद्रथ तक पहुंचने के लिए, और ऐसा युद्ध कर रहा था और अर्जुन का जो हाथ और तीर पे ऐसा चल रहा था तो ऐसा सुदर्शन चक्र जैसा जोर जोर से चलता है, फास्ट फास्ट ऐसा लग रहा था, क्योंकि किसी को पता नहीं चल रहा था कि कब अर्जुन तुनीर में हाथ डाल रहा है और कब उसको तीर धनुष पर रख के और तीर मार रहा है, ऐसा ऐसा करके और सबको तोड़ते हुए जा रहा था वो आगे, लेकिन फिर भी वो जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाया। तब कृष्ण ने क्या किया, उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिस सिद्धांत को उन्होंने भगवद गीता में बताया। भगवान ने भगवद गीता में एक बड़ा सिद्धांत बताया, क्या कहा उसने अर्जुन को, मया दक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, ये प्रकृति जो है वो मेरे अंडर, इट इज वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन। मया अधिक्षेण मतलब मया क्षेण, अक्ष का मतलब होता है आंख, हमने भी बताया प्रत्यक्ष, तो मया मतलब मेरी आंखों के सामने ये प्रकृति कार्य करती है, और इतना बोल के चुप नहीं रहे, उसको करके दिखाया अर्जुन को उसी समय, और उन्होंने क्या किया, सूर्य को अस्त करवा दिया, और फिर पागल के जैसे बाहर निकला जयद्रथ, बोला वाह अभी अर्जुन मरेगा, देखता हूं मैं कैसे मरेगा। और तब कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, देखते क्या हो, ये रहा सूर्य और ये रहा जयद्रथ, मारो बाण। और जब बाण भी मार रहा था, अगर कृष्ण ने बताया नहीं होता तो शायद अर्जुन का भी सिर फट जाता था, तो उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा बाण मारना उसको कि इसका सिर कट के इसके पिताजी के गोद में जाके गिरे जो तपस्या कर रहे हैं, और वो वहां पे गिरता है और दोनों मर जाते हैं। तो इधर तक जाके और उसकी रक्षा की। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, वो भी अभी आएगा थोड़े थोड़े श्लोकों के बाद, कि जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने तो उत्तरा दौड़ते दौड़ते उनके पास आई कि कृष्ण कृष्ण महाभागो भक्तानाम अभयंकर पाही पाही जगतपते, बोले बचाओ मुझे। और तब कृष्ण ने क्या किया, परीक्षित को बचाया, उसको जिला दिया। तो कृष्ण बहुत एकदम, फिर इसी प्रकार से कृष्ण ने मीराबाई को बचाया, कृष्ण ने तुकाराम को बचाया, कृष्ण ने नरसिंह मेहता को बचाया, कितने भक्तों की भगवान ने रक्षा की है। क्यों? क्योंकि वो भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने की कोशिश करता है, और भक्ति करने का सबसे सरल और अच्छा मार्ग क्या है, श्रवण और कीर्तनम। तो जैसे ही अगर हम इसको भागवत को सुनते हैं, और ऐसा नहीं है कि भागवत सुनने के बाद हम भक्ति करेंगे, यू नो, एक और मैं आपको आज खाली हम अभी श्लोक में नहीं जा पा रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी, बट ये तत्व जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को समझना, और इसको बार बार रिपीट भी करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम भागवत पढ़ के और भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं है, भागवत सुनना ही भक्ति है अपने आप में, है कि नहीं। जब हम जैसे ऐसा कहते हैं कि भगवान अपने नाम में है, ये गलत है ना, कोई ऐसा कहते हैं कि कृष्णा इज इन द नेम, तो प्रभुपाद एक बार ऐसा डिस्कस कर रहे थे तो किसी डिसाइपल ने कहा, तो प्रभुपाद ने कहा ये क्या है, हु टोल्ड यू, कृष्णा इज द नेम और द नेम इज कृष्णा, सो भागवत इज कृष्णा। ऐसा नहीं कि भागवत के अंदर कृष्ण है, क्या है, श्रीमद भागवत जो है वो भगवान का साहित्यिक अवतार है, इट इज ए लिटररी इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। तो श्रीमद भागवतम कृष्ण है, हरि नाम कृष्ण है, तो भागवत सुनना ही भक्ति है। तो भागवत सुनना और भक्ति अलग अलग नहीं है। तो अभी हम लोग जो बैठ के सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ये अपने आप में ही भक्ति है, ये भक्ति का कार्य है। और जितनी देर तक हम लोग इस भक्ति के कार्य में लगे हुए हैं, तब तक हम वी आर अवे फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ माया, तब तक हम लोग फॉर द टाइम बींग यू नो वी आर अवे। और जैसे ही क्या होता है कि भागवत बंद होता है और हम लोग बाहर निकलते, वापस से माया अटैक करने लगती है। तो कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ तारे माया झपटिया धरे। तुरंत माया क्या करती है, पकड़ लेती है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि जब भागवत बंद होता है तो अपने हृदय में भागवत को खोलना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए कि भाई हमने क्या सुना, हमने क्या पढ़ा, क्या है उसके बारे में। जब बार 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 देखेंगे, सोचेंगे, और कृष्ण का क्या है आदेश, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। और कृष्ण ने तन मना नहीं कहा है कि अपना तन मुझ में लगाओ, ऐसा नहीं कहा, कहा मन लगाओ। और ये मन लगाना ही बहुत कठिन होता है, और कई बार हमने इस बात पे चर्चा की है कि मन जो है बहुत ही डिफिकल्ट है ना। अर्जुन क्या कहता है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। कि मन जो है लगाना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो लेकिन अगर हमको माया के ऑनस्लॉट से बचना है और हमारा जीवन जो है सार्थक करना है और इस जीवन के अंदर इसको मंगलमय बनाना है, तो भागवत का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान के पवित्र नामों का आश्रय लेना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम इसी दुस्तारे खलु विस्तारे कृपया पाहे बाहि मुरारे। एक बार एक व्यक्ति अपने दुख के बारे में बता रहा था, एक समस्या के बारे में बता रहा था, एक किसी ब्रह्मचारी से बात हो रही थी। तो उसने कहा कि ये प्रॉब्लम है, ये है, ऐसा ऐसा है। तो उसने कहा कि एक काम मैं तेरे को बोलता हूँ, बता इन दोनों में से बड़ा प्रॉब्लम क्या है। तो उसने कहा कि सब वापिस से तेरा जन्म होगा और तू इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में आएगा, वो बड़ा प्रॉब्लम है, या जो अभी तू बता रहा है वो बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि ये प्रॉब्लम तो है, टेम्परेरी है, खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर बाई चांस हम लोग वापिस से उस चक्र के अंदर आ गए, क्या कहने, कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ दुबई और अबू धाबी में जब ड्राइव करते हैं तो कई बार ये म्यूनसिपालिटी वाले रोड वोड कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद कर देते हैं, और हमने एक एग्जिट गलत ले लिया तो घूमते रह जाएंगे, जैसे ढूंढते रह जाओगे, जैसे घूमते रह जाओगे। तो कई बार, एक बार मैं कहीं जा रहा था दुबई में और मुझे पता नहीं था, नया नया लाइसेंस गाड़ी मिला था, चला के जा रहा था और एक एग्जिट मिस कर गया मैं, जो सही एग्जिट था, और उस टाइम जीपीएस वीपीएस इतना कुछ था नहीं, पता नहीं था, आया भी नहीं था मेरे ख्याल से जीपीएस उस टाइम पे। तो हम लोगों को फोन करते थे बार बार दुबई जाते जाते, और 10-15 मिनट तक तो फोन पे रहते थे, इधर से टर्न ले, इधर से ये ले, इधर बकाला दिखेगा, इधर ये दिखेगा, ऐसा करते करते घूमते रहते थे। तो मिस किया और सीधा मैं शारजा पहुंच गया, पूरा एक अघासुर जैसा बड़ा ब्रिज आया और उसके ऊपर ही चलते जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ।
ये अपना पुराना नया वाला एयरपोर्ट लगा है ना, हाँ, तो वहाँ राउंड रोड था पहले,
हाँ,
तो मुंबई पे आ रहा था, उनको लेने के लिए मैं गया, तो वहाँ गया नहीं, तो वो राउंड रोड उधर है नहीं, वो सीधा गया आगे ब्रिज से, पता नहीं कहाँ घूमा, वो सीधा ही चला गया
और वापस फिर घूम घूम के आओ हम लोग कितना। तो क्या है कि मनुष्य जीवन के अंदर हम लोग आए हैं, ये जंक्शन के जैसा है, यू नो, उसमें ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी जा सकते हैं, और अगर हमने इसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया तो वापस अंदर फंसेंगे और फिर घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, कितना टाइम वेस्ट करेंगे, है क्या नहीं। तो इसके लिए एक जो हमको ये जन्म मिला है, तो इम्पोर्टेंट क्या है, हमको कैसा करना चाहिए कि जैसा इस भागवत के अंदर हमको बताया गया है कि परीक्षित महाराज को जब ये पता चला कि 7 दिन 7 रात में मेरी मृत्यु होगी, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने क्या किया, भागवत सुनने के लिए बैठ गए। तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते, या अपना जो काम है, जो भी मटेरियल वर्ल्ड में हमको जो भौतिक जो हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, उसको निभाना है, सब करना है, लेकिन जब भी समय मिलता है लेके बैठ जाना चाहिए, है कि नहीं। और अभी तो मोबाइल उबाइल पे सब जगह पे सबको हर चीज की सुविधा है, सब ऐप के अंदर अवेलेबल है, तो इसको पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा कि भगवान देखेंगे कि कोई व्यक्ति है जो मुझे पाने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है, और जब भगवान वो देखते हैं तो फिर भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और तब क्या करते हैं, अपनी कृपा देते हैं। और तो भागवत जो है वो हमको सिखाता है
आर्ट ऑफ डाइंग,
पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे हैं, लेकिन भागवत सिखाता है व्हाट इज आर्ट ऑफ डाइंग, कि मरना कैसे है। और मैंने कई बार ये बात पहले भी कही है कि भगवत गीता जो है वो जीना सिखाता है हमको, वो हमारे लिए मैनुअल है ना, और भागवत जो है वो हमारे लिए कि ये शरीर कैसे छोड़े हम लोग और कैसे भगवत धाम में जाए। तो इस शरीर को छोड़ेंगे भगवत धाम जाएंगे वो बताने के लिए श्रीमद् भागवतम है, और श्रीमद् भागवतम दिव्य ग्रंथ है। और जैसा हमने अगर समरी में बात करें तो हमने चर्चा की कि भागवत को कानों से श्रवण करना चाहिए, भगवान को देखने की इच्छा करने के बदले कानों के थ्रू देखना चाहिए, और श्रीमद् भागवतम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान और श्रीमद् भागवतम एक ही है, दोनों अभिन्न है, और ये दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य ग्रंथ है जो भागवत दिया है, और इसका आश्रय लेके इस संसार के अंदर हम लोग मृत्यु पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और बहुत जरूरी है कि इसको, इसका आश्रय लेना चाहिए, इसको सुनना चाहिए। तो यानी भाई इतना कहते कहते अभी हमारा टाइम पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी हम एक काम करेंगे कि नेक्स्ट श्लोक जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट टाइम, तो मैं इसका ये तात्पर्य और ये दोनों उसमें कवर कर लूँगा नेक्स्ट क्लास में। तो इसको मैं दो चार बार पढ़ता हूँ, आप इसको रिपीट कीजिए, और ये दोनों श्लोक मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप लोग याद करके आइए, और नेक्स्ट टाइम फिर इसको हम फटाफट श्लोक को पढ़ के उसका अनुवाद पढ़ के और प्रभुपाद जी जो इस तात्पर्य में लिखे हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज तो खाली हमने भागवत क्यों सुनना चाहिए उसी विषय पे मुख्य रूप से चर्चा की, और फिर आगे पढ़ेंगे। तो दसवां श्लोक जो है उसको आप मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो येश्चेह कर्म भी। काम्यस्य नेन्द्रिय प्रीतिः लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो येश्चेह कर्म भी। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिः लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो येश्चेह कर्म भी। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिः लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो येश्चेह कर्म भी। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिः लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो येश्चेह कर्म भी। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। समस्त वृत्ति पर कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। जीवन की इच्छाएं इंद्र तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्यों की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो ये भागवत हमको बताता है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमको भगवान के विषय में, परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। समसिद्धि हरितोषणम। और प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य कहते हैं, हम लोग ये पहला वाला तात्पर्य आज पढ़ते हैं, नेक्स्ट तात्पर्य नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे और दोनों तात्पर्यों पे फिर चर्चा करेंगे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा हम पहले ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाती है। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निमित्त है। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्यता प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई न कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। तो देखो, सारे के सारे लोग इस दुनिया में कैसे हैं, जो भगवान से बिजनेस करना चाहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए, मैं 16 सोमवार का व्रत करूंगा तो मुझे इसका ये लाभ होना चाहिए, मैं 10 बुधवार करूंगा मुझे ये लाभ होना चाहिए, मैं नवरात्र अगर कुछ करूंगा तो मुझे इसका ये लाभ होना चाहिए। तो बहुत जो लोग हैं वो ज़्यादातर लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि बस मैं कुछ करूं और बदले में मैं कुछ पा लूं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ को प्रलोभन दिया गया है और अधिकांश लोग ऐसी धार्मिकता के प्रलोभनों अथवा आशीर्वादों के प्रति आसक्त होते हैं, आकृष्ट होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ये बात भगवद गीता में भी बताते हैं, अबाउट द फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास, कि वेदों के अंदर बहुत कुछ कहा है और ये नारद मुनि की ही कृपा है कि उन्होंने व्यास देव जी को फटकारा और कहा कि ये तूने क्या किया, इतने सारे वेद उपनिषद सब लिख दिए और जीव जो है बद्ध जीव वो पहले से ही आकर्षित है इन सब चीजों के लिए और तूने उसको और बढ़ावा दे दिया, इसके लिए तू जो है संतुष्ट नहीं है। तो जब व्यास देव जी ने पूछा कि मेरी असंतुष्टि का कारण बताओ, और बोला कि ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, तन मूलम अगाध बोधम, उन्होंने कहा कि मूल रूप से, तन मूलम, प्लीज टेल मी द रूट कॉज एनालिसिस, कि मेरे में क्यों मैं संतुष्ट नहीं हूं। और उन्होंने कहा कि क्योंकि तुमने भगवान के बारे में डायरेक्टली बरोबर से नहीं बताया, इसके लिए ये असंतोष जो है वो तेरे हृदय के अंदर है और इसीलिए मैं तुमको कहता हूं कि अभी तुम एक शुद्ध ऐसे शास्त्र की रचना करो जिसके अंदर भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का रूप और भगवान की जो लीला है उसका विस्तृत वर्णन करो और श्रीमद् भागवतम की रचना करो। तो ये नारद मुनि की कृपा से श्रीमद् भागवतम हमको प्राप्त हुआ है। तो फिर ऐसे तथाकथित धार्मिक लोग भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकर्षित होते हैं, क्योंकि भौतिक लाभ की इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तृष्टि होती है। प्रभुपाद क्या कहते हैं कि क्योंकि हमारी इच्छा की पूर्ति होती है और उससे हमारी इंद्रिय तुष्टि होती है। वृत्तियों के इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आती है जिसके बाद भौतिक लाभ और भौतिक लाभ के बाद इच्छा पूर्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति पूरी तरह से व्यस्त समस्त प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है। मतलब इस दुनिया में जितने लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं और उसी में व्यस्त रहते हैं और ये जो है यही लोगों का सामान्य मार्ग है। इसके लिए क्या होता है कि अगर कोई इससे हट के कोई कार्य करने की कोशिश करता है तो समटाइम ही बिकम्स आउटकास्ट इवन इन द फ्रेंड सर्कल, और उसको लगता है अरे तू पूरी तरह से बदल गया, तू पहले तो ऐसा नहीं था, तुम ऐसा कैसे हो गया, ये क्या ये चोटी रख रहा है, ये क्या बाल उड़ा दिया, ये क्या माला झोली लटका के घूम रहा है, ये क्या कर रहा है, ये मतलब ये बहुत लोगों को एकदम अजीब लगता है कि अगर किसी कोई व्यक्ति अगर भक्ति करने के लिए आता है तो जो चीज अच्छी होनी चाहिए कलयुग के अंदर उसका उल्टा होता है, कि जो अच्छी चीज को होगा इसके लिए वो लोग गीत में भी गाते हैं, बहुत रेलेवेंट गाना है कि रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना और कौवा मोती खाएगा, मंदिर सुना सुना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। तो यही है कि जो भोगी होगा वो योगी माना जाएगा और जो योगी होगा वो भोगी माना जाएगा, ऐसा सब है। तो ये बहुत ही यू नो इम्पोर्टेंट प्रभुपाद जी बात बता रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर ज्यादातर लोग वैसे ही है और हम लोग जो है वो बहुत कम चुने हुए ऐसे लोग है जो भक्ति करने का कोशिश कर रहे हैं। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन यो माम वेति तत्वतः। इंद्रिय तृप्ति पूरी तरह से व्यस्त समस्त प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है, किंतु श्रीमद् भागवत के निर्णय के अनुसार इस श्लोक में सूत गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति न अपनाए, न ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जाता है इसका वर्णन आगे के श्लोक में हुआ है। तो आगे के श्लोक में हम देखेंगे, इस श्लोक में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, मतलब शुद्ध गोस्वामी यहाँ पे कहते हैं कि धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। तो भौतिक लाभ जो हमको होता है या जो हम हमारी जो वृत्ति होती है, जो हम कार्य करते हैं, उसे कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। तो ऋषियों के अनुसार व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करें। तो हमारे को जो समझो अगर कुछ भौतिक लाभ भी होता है और अगर किसी ने बहुत कुछ कमा लिया तो सोचता है कि अभी इससे मैं एंजॉय करूंगा, मैं इसका आनंद का उपभोग करूंगा, लेकिन ऐसा बताते हैं कि उसको अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमको सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। तो मनुष्य को चाहिए कि रोटी कपड़ा और मकान, यू नो, जितनी चीज हमको पेट भरने के लिए चाहिए। और ऐसा है कि जो व्यक्ति अगर बड़ा भी रहेगा तो ऐसा नहीं कि सोने की रोटी खा रहा है या चांदी की रोटी खा रहा है, वो रोटी तो गेहूं की खाएगा, लेकिन तो बोले उतना करो और बाकी का जो समय मिलता है और जो द्रव्य है हमारा, हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा, हमारा समय कहाँ पे लगाना चाहिए? भगवान में लगाना चाहिए। और भगवान में लगाने का सबसे अच्छा सुगम मार्ग जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रशस्त किया है हमारे लिए, और श्रवण और कीर्तन। जब समय मिले उतना कीर्तन करो, जितना समय मिले उतना जप करो, जितना समय मिले उतना भागवत पढ़ो। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा और हम भगवान की ओर धीरे 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 अग्रसर होंगे। तो इसका सदुपयोग किस प्रकार से करना चाहिए ये हम नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे। सो आप सभी से निवेदन है कि नेक्स्ट टाइम आप सभी आइएगा और हम लोग इसकी चर्चा साथ में बैठ के करेंगे। सो होपफुली नेक्स्ट टाइम वेनेसडे को हम क्लास